हरे कृष्णा। तो भजन गाएंगे, ठीक है। श्रील वल्लभाचार्य द्वारा विरचित अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। वमितं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्णा श्री मधुराष्टकम की जय। आप में से कितने भक्तों ने ये भजन पहली बार सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम, केवल दो या तीन। बाकी सब ने ये सुना है और गाया है, ठीक है। इस के विषय कौन है? भगवान श्री कृष्ण आदि गोप है ना? यस, आदि गोप श्री कृष्ण इस भजन के विषय हैं। मधुराधिपति, मधुर अधिपति, अखिलम मधुरम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जो भी कुछ कहा जा सके, जो भी उनसे संबंधित चीजें हैं, व्यक्ति हैं, सब मधुर हैं। तो आप सब वैष्णव भजन भी बीच बीच में गाते हो, ये भी एक आवश्यक भाग है हमारी साधना का, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी में है क्या भागवतम? मोबाइल में? अच्छा ठीक है, रख दो। और जिनका मोबाइल बजेगा उनको दंड मिलेगा। नहीं, दंड क्या होगा? सारे भक्त उनके आके पैर छुएंगे। ठीक है, फिर शर्म के मारे प्राण त्यागने की इच्छा हो जाएगी, है ना? कबूल है? हाँ, हिंदी में लगा। तो यहाँ पर राधा पार्थ सारथी मंदिर से अतिरिक्त और कहाँ से भक्त आए हैं? फरीदाबाद और द्वारका मंदिर से भी आए हैं ऐसे सुना। तो द्वारका मंदिर से कौन आए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, द्वारका मंदिर से। और कहाँ से? फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, दो चार आए हैं। हाँ, पहुंचने वाले हैं। अच्छा, संकीर्तन टीम, आप सब बहुत भाग्यशाली हो। जहां पे भी आप हो, आप वृंदावन में ही हो। क्यों? क्योंकि जहां पे भगवान कृष्ण की सेवा चल रही होती है, जहां उनका नामोच्चारण होता है, स्मरण होता है, वहीं वृंदावन है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो आप सब कहाँ रह रहे हो? किसी ने ये नहीं कहा हम दिल्ली में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हो आप सब? वृंदावन में रहते हो। ठीक है, तो ये श्लोक है चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय का आठवां श्लोक। और स्वयं भगवान विष्णु इस श्लोक को कह रहे हैं। किन से कह रहे हैं? प्रचेताओं से कह रहे हैं। प्रचेता कौन थे? महाराज प्राचीन बरिषद के पुत्र थे। कितने पुत्र थे वो? 10। और वहां भगवान क्यों प्रकट हुए? क्या कर रहे थे प्रचेतागण? तपस्या कर रहे थे लंबे समय के लिए। कहाँ पे तपस्या कर रहे थे? पानी के अंदर, जल के भीतर तपस्या कर रहे थे। तो जब तपस्या इतनी लंबे समय तक उन्होंने की, तो फिर भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। ये क्या हो गया? तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने ये श्लोक कहा। वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथक् धर्माः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्री भगवान उवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथक् धर्माः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथक् धर्माः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। अच्छा, ये सबको कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए इस श्लोक को, ठीक है। सारे भक्तों के लिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है और विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, वरम वर आशीर्वाद, वृणीध्वं मांगो भद्रम कल्याण, वह तुम सबका, यूयम तुम सब में मुझसे, नृपनंदनाः हे राजपुत्रों सौहार्देना मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्माः कार्य तुष्टः प्रसन्न अहम् मैं सौहृदेन मित्रता से वह तुम सबका। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, भगवान ने कहा, हे राजपुत्रो, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, चूंकि राजा प्राचीन बरिषत के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। अच्छा, कोई पढ़ेंगे क्या? कोई पढ़ो।
राजा प्राचीन बरिषत के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बरिषत के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो लें, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता, वहाँ एकमात्र उद्देश्य यह है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वर्षत के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं।
बहुत अच्छा, कितना सुंदर श्लोक है और कितना सुंदर तात्पर्य है। तो भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं। हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुष्टो हम, तुष्ट भगवान कहते हैं मैं संतुष्ट हो गया हूं। क्यों संतुष्ट हो गया हूं? सहृदयेन वह, आप सबके बीच में ऐसे मित्रता की भावना को देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूं। और सही मैत्री, सही मित्रता किस आधार पे हो सकती है? जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भौतिक स्तर पर ऐसे शुद्ध संबंध, ऐसे वास्तविक मैत्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भौतिक स्तर में के ऊपर हर एक व्यक्ति स्वार्थी होता है। स्वार्थ का क्या अर्थ है? साधारण जो अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी भिन्न इच्छाएं होती हैं, जो न केवल एक दूसरे से भिन्न हैं परंतु भगवान कृष्ण से भी भिन्न है। इसलिए वास्तविक एकता ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उदाहरण किनका दिया है? संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि जितने भी ध्वज वहाँ पर हैं, झंडे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि एकता नहीं बढ़ रही है, विभाजन होते जा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी चेतना में, सबकी विचारधारा में केंद्र बिंदु अलग अलग हैं। जब सबके जीवन के केंद्र बिंदु एक ही होंगे और वो श्री कृष्ण होंगे, तब जाकर वास्तव में प्रेम और मैत्री की भावना लोगों में उत्पन्न हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ प्रचेताओं के ऊपर प्रसन्न होने के पीछे दो मुख्य कारण थे। क्या है? अपृथक धर्माः, वो एकजुट होकर एक ही कार्य कृष्ण भक्ति में लगे हुए थे। बड़े सुदृढ़ रूप से उन्होंने भगवान की सेवा की, ठीक है? ये पहला कारण था भगवान का प्रसन्न होने के पीछे। और दूसरा कारण था इससे भी महत्वपूर्ण, वो क्या था? सौहार्द देना। भक्ति करते करते आप सब के बीच में ये सौहार्द की भावना जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है, उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, हे प्रचेताओं। ये दूसरी बात है, सौहार्द अर्थात मैत्री। सौहार्द शब्द कहाँ से आता है? सुहृद, हृद अर्थात हृदय, सु अर्थात अच्छा। तो सु और दुह, सुख और दुख, ये विपरीत शब्द होते हैं। जब सु आगे डाला जाता है इसका अर्थ है बहुत अच्छा, दु डाला जाता है तो बहुत बुरा। ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं आप जहां सु और दुह पहले शब्द की किसी रख के दोनों शब्दों का अर्थ विपरीत हो जाता है? हाँ, सुगंध और दुर्गंध, दुर अर्थात दुह, सु और दुह, सूर्योधन सुगंध और दुर्गंध, हाँ, और हाँ, सुयोधन और दुर्योधन। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज वो इतने अच्छे थे कि उनको किसी के अंदर बुरे गुण देखने की प्रवृत्ति नहीं थी, बुरी चीजें दिखते ही नहीं थे उनको, और दिखते भी थे तो वो उनको उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते थे। तो दुर्योधन, दुर्योधन शब्द का अंत मत अर्थ क्या है वास्तव में? हाँ, नहीं, साधारण भाषा में दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जिनके विरुद्ध में युद्ध करना बहुत कठिन हो, दुर्योधन, जिनके खिलाफ, जिनके विरोध में जाके युद्ध करना बहुत कठिन हो, वैसे देखा जाए तो ये नाम अच्छा है ना? जैसे क्षत्रियों में होता है कभी कभी इस तरह के नाम। परंतु युधिष्ठिर ने सोचा कि अरे ये दुह आ गया ना सामने तो ये अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको सुयोधन बुलाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को सुयोधन कह के पुकारते थे। तो खैर, दुह और सु, तो सुहृद, और इसके विपरीत सुहृद जो होता है इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के हृदय में जब सामने वाले के प्रति केवल अच्छी भावना रहे हर परिस्थिति में, कभी वो परिस्थिति बदली फिर भी वो जो शुभ अच्छी कामनाएं हैं, शुभेच्छा है, शुभ कामनाएं हैं हृदय में सामने वाले के प्रति, वो बदलते नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताया करते थे कि कई शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में तो कहते हैं फ्रेंड, परंतु संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, उनको बताया जाए नियम क्या है। अभी फोन बंद कर दो नहीं तो बड़ी दुर्घटना होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब संस्कृत में कई शब्द हैं जैसे मित्र, बंधु, सखा, सखा अर्थात जो बहुत निकट के हैं, और मित्र, मित्र अर्थात इसमें थोड़ी औपचारिकता भी आ सकती है कभी कभी, बंधु, ऐसे कई शब्द हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुहृद ये सबसे श्रेष्ठ मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में देखा जाता है कि मित्रों के बीच में संबंध कभी कभी बिगड़ जाते हैं, कोई मतभेद हो जाता है मित्रों के बीच में, या किसी कारणवश संबंध उनके बिगड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि जो पहले घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे अभी दुश्मन बन जाते हैं, उनके बीच में इतना वैर हो जाता है कि वो एक दूसरे की हत्या भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक भी बातें पहुँच जाती हैं। तो ये संसार की मैत्री इस प्रकार की है, परिवर्तनशील है। आज एक व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा मित्र है, परंतु कल लग सकता है कि ये तो मेरा शत्रु है, इसकी मैं इसको हानि पहुंचाऊंगा, इसका खून कर दूंगा मैं। तो परिस्थिति बदलने पर उसके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति विचार बदल गए, कितने बदल गए, पहले तथा कथित प्रेम था अपने मित्र के प्रति, और अभी प्रेम न रहकर दुश्मनी आ गई, ईर्ष्या घृणा आ गई, गुस्सा आ गया। परंतु जो सुहृद होता है किसी भी परिस्थिति में सामने वाले के प्रति अच्छी भावनाएं ही रखता है, भले सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति की बुराई करे, कुछ भी करे, परंतु उसके हृदय में शुभकामनाएं ही रहती हैं। तो इस तरह की जो भावना है वो केवल शुद्ध भक्तों में हो सकती है। साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, ठीक है हम लोग मित्र हैं, लेकिन यदि हमारे मित्र में मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया, भला बुरा कह दिया, या इस तरह से कुछ किया जिससे कि मुझे हानि पहुंची, तो मेरे मन में उसके प्रति जो भावना है वो तुरंत बिगड़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे होता है। परंतु भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस तरह से बुरा नहीं मानते हैं। किसी व्यक्ति ने उनके पर भला बुरा कुछ कह भी दिया, परंतु वो सदैव उस व्यक्ति के शुभ चिंतक रहते हैं, उनकी भलाई ही चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भलाई चाहना हृदय से। हरे कृष्णा, मोहन रूप प्रभु हरि बोल। हरे कृष्णा, कम वणकम। எப்படி இருக்குங்க? அபி மோகன் ரூப் பிரபு தில்லி கே ஹோ கே நா பச்பன் சே, தோ அபி தில்லி கே அலாவா, தில்லி ஔர் வைகுண்ட் கே அலாவா ஔர் குச் பதா ஹி நஹி ஹை நா। हरे कृष्णा। तो हम क्या कह रहे थे कि जो सुहृद होते हैं वो क्या करते हैं, केवल शुभ चिंता करते हैं, अन्यों के बारे में भला सोचते हैं। सामने वाले ने उनको हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया यदि हो, फिर भी वो सामने वाले के बारे में भला ही सोचते हैं। कल सुबह भागवत कक्षा में हमें उदाहरण दे रहे थे ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीन उदाहरण देते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु ने मधाई के ऊपर कृपा की, जड़ भरत ने महाराज रहुगण के ऊपर कृपा की, और उपरिचर वसु ने असुरों के ऊपर कृपा की। ये तीन उदाहरणों की चर्चा हम कर रहे थे कल, है ना। तो ऐसे महान भक्तों के लक्षण होते हैं। इसलिए जब भी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो अंत में सदैव क्या कहते थे, योर एवर वेल विशर। ये है सुहृद, वेल विशर। वेल विशर का मतलब क्या होता है, शुभ चिंतक, और एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा सदैव। जो हमारे सदैव शुभ चिंतक होते हैं वो सुहृद है। केवल भक्त ही हमारे सुहृद हो सकते हैं, और जितने भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं वो भक्त, उतने ही अधिक वो हमारे शुभ चिंतक हो सकते हैं। दुनिया में कभी कभी देखा जाता है कि माताएं भी अपने बच्चों की हत्या करती हैं। भौतिक स्तर पे संसार के दृष्टि से ऐसे समझा जाता है कि एक माँ और बच्चे का जो संबंध है सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है तुलनात्मक दृष्टि से। हालांकि ये भी तो भौतिक ही है, फिर भी भौतिक स्तर के ऊपर जितने भी संबंध हैं तुलनात्मक दृष्टि से इनका विश्लेषण किया जाए तो माँ और बच्चे का संबंध जो है सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि माँ केवल त्याग करती है बच्चे के लिए, कुछ अपेक्षा नहीं करती कि बच्चा मुझसे ऐसे करेगा वैसे करेगा। परंतु ये देखा जाता है कि कभी कभी महिलाएं भी अपने बच्चों की हत्या करते हैं। घर में भी रहने वाले की बच्चे की हत्या तो करते ही हैं, गर्भपात, परंतु साथ साथ कभी कभी आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने में आता है कि किसी ने कुछ दूसरी जगह संबंध बना लिया, अपने बच्चों की हत्या कर दी, माँ ने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी, तो भौतिक जगत में जो है ये संबंध कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। हर संबंध में स्वार्थ भरा रहता है, कहीं कम कहीं अधिक, परंतु शुद्ध भक्त के हृदय में तनिक भी कोई भौतिक दृष्टि से स्वार्थ नहीं होता। इसलिए वही है जो हमारा वास्तविक शुभ चिंतक हो सकता है, हितैषी हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे योर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभ चिंतक हितैषी। तो भगवान के भक्त जो हैं वो हितैषी होते हैं अन्यों के। तो जब एक भक्त अभक्त के प्रति ऐसी भावना रखता है तो क्या वो अन्य भक्तों के प्रति ऐसी भावना नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। इसलिए ये जो श्लोक है और ये जो प्रसंग है ये ब्रह्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भक्तों के लिए भी है, सारे भक्तों के लिए है, परंतु विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि सारे ब्रह्मचारी इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सेवा करते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है, सरल जीवन है, बस दो दो चटाई है, थोड़े धोती कुर्ता कुछ है, कुछ किताबें हैं बस, और क्या है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जितने भी ब्रह्मचारी हैं आप में से अपने लॉकर में कितनों ने सोना चांदी वो छुपा के रखा है? है कोई ऐसे वो आपके शेयर सर्टिफिकेट और नोट वोट रख छुपा के रखे हैं किसी ने? नहीं ना। क्या करना है आप सबको इन चीज़ों से? ये सब छोड़ के इधर आए हो ना भगवान का शरण लेने के लिए। तो जीवन बड़ा सरल है, सरल जीवन होने के कारण आपस में मिलजुल के छोटी जगह में रहना संभव होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान प्रसन्न हुए प्रचेताओं के ऊपर कौन से दो कारणों से, जो मैंने पहले बताया, एक अपृथक धर्माः, एक ही धर्म में अर्थात भक्ति में वो लगे हुए थे एकजुट होकर, और दूसरी बात सौहार्देना, सौहार्द एक दूसरे के प्रति उनकी भावना कैसी थी, सौहार्द की भावना थी, सुहृद एक दूसरे के शुभ चिंतक थे। तो पहली बात अपृथक धर्माः, पृथक अर्थात भिन्न और अपृथक अर्थात अभिन्न, एक ही। तो जब ब्रह्मचारी आश्रम में भक्त रहते हैं हमारे मंदिरों में, वो भी अपृथक धर्माः हैं, सब एक ही कार्य में लगे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, बस एकजुट होकर रह रहे हैं। भले सबकी सेवा अलग अलग क्यों ना हो, कोई रसोई घर में सेवा करते हैं, तो कोई पुस्तक वितरण करते हैं, तो कोई प्रचार के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई मंदिर का मार्जन करते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ, परंतु अंततः सभी लोग भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी आश्रम में कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य किसी व्यक्ति की पूजा कर रहा हो, है ना, भगवान को छोड़कर। दुर्भाग्यवश दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो तरह तरह की उपासनाएं करते हैं ना, सिनेमा के अभिनेता की उपासना करते हैं, उनके लिए मंदिर भी बनाते हैं भारत में। ऐसे हुआ, ऐसे है, सत्य है ये। दक्षिण भारत में हमने पढ़ा कि सिनेमा के अभिनेता के लिए, कोई राजनेता के लिए अलग अलग उन्होंने मंदिर बनाए हैं, और वहाँ आरती भी होती है, सब होता है ना। तो किसी भी हमारे संस्था के ब्रह्मचारी आश्रम में क्या देखेंगे, कि कोई राजनेता के या कोई सिनेमा के अभिनेता या अभिनेत्री के कोई आरती उतार रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं सब अपृथक धर्मा, सब लगे हुए हैं एक ही धर्म में, और वो है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, जिसमें भगवान के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति की उपासना नहीं की जाती। हाँ, भगवान से संबंधित जो हैं ऐसे व्यक्तियों की सेवा की जाती है, जैसे भगवान के भक्त हैं तुलसी है, यमुना है, गंगा है, गोमाता है, इनकी सेवा अवश्य की जाती है, क्योंकि इनका संबंध बड़ा घनिष्ठ है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो ये पहली बात है, ब्रह्मचारी आश्रम में सारे भक्त मिलजुल कर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, और सबकी तो इच्छा है कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे ऊपर, कोई ऐसे भक्त नहीं चाहता कि भगवान हमारे ऊपर नाराज हो जाए, हर एक भक्त चाहता है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपृथक धर्माः। तो जो भी गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें बतलाया गया है, भक्ति भक्ति के रास्ते में करने के लिए, वो हमें हृदय से करना है। और आप सब कर ही रहे हैं, मंदिर में प्रातः काल से आपका दिन शुरू होता है, आप लगे रहते हैं अपनी साधना में, कीर्तन में, जप में, प्रसाद सेवन करके फिर दिन भर सेवा में लगे हुए रहते हैं, इससे अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे। जितने हृदय से आप ये सारे कार्य करेंगे उतने अधिक भगवान की प्रसन्नता होगी। यदि हमारे सेवा को, हमारे साधना को हमने औपचारिकता के रूप में कर लिया, बस करना है ना तो करने के लिए कर लिया भी, तो फिर भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे। तो हृदय से करना है हमें, बड़े जिम्मेदारी से करना है, श्रद्धा से करना है, प्रेम से करना है। हम भगवान के लिए जो भी कुछ कर रहे हों, यदि हमें बताया जाता है कि आप रसोई घर में सेवा कीजिए और आपकी सेवा है सब्जियां काटना, तो जब आप आलू काटोगे या कोई भी और सब्जी आप काट रहे होगे, तो ये समझिए कि आप ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए काट रहे हैं। तो जब आप काटोगे तो पूरे ध्यान से काटोगे, प्रेम से काटोगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब्जी पकाई जाएगी फिर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की जाएगी। ये आलू साधारण नहीं है, ये टमाटर साधारण नहीं है, ये कृष्ण के लिए अर्पणीय है। थोड़े ही देर में भगवान कृष्ण इसका स्वाद लेंगे। तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान के लिए मैं आलू काट रहा हूं। ऐसे एक कृतज्ञता की भावना हो, बड़े प्रेम से हम सेवा करें, छोटी सेवा हो, बड़ी से बड़ी सेवा हो। वैसे तो भक्ति के रास्ते में सेवाओं में कोई अंतर नहीं होता, चाहे कोई शौचालय का मार्जन कर रहा हो या कोई आसन पर बैठ के धुआंधार प्रवचन दे रहा हो हजारों लोगों के सामने, दोनों भगवान की दृष्टि में एक ही है। यदि दोनों भक्त उतने ही नम्रता से और उतने ही प्रेम से वो सेवा कर रहे हों, तो भगवान की दृष्टि में दोनों की सेवा बराबर की है, समान है। तो आप सब वैसे कर ही रहे हो ये सब चीजें, तो और थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमारी भावना की बात है, केवल सेवा शारीरिक रूप से करना इतना काफी नहीं है, किस भावना से, किस चेतना से हम कर रहे हैं, सेवा करते समय हमारी मानसिकता क्या है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, एक प्रवचन में कहते हैं कि मैंने ये मंदिर बनाने की व्यवस्था की है और मंदिरों में हमारे अर्चा विग्रह हैं और कई भक्त विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त श्रवण कीर्तन करना छोड़ देता है, लापरवाही करता है उसमें, तो विग्रह बन जाएगा गलत ग्रह। ऐसा लगने लगेगा उस भक्त को कि अरे गुरु महाराज ने कहाँ फंसा दिया हमें, हमें यह अर्चक विग्रह की सेवा करने के लिए लगा दिया, ये सुबह से भी उठो, ये सब आरती करना, स्नान करके आना, ये शौच का पालन करना, शुचि का पालन करना, है ना, इस सब कितनी कठिनाई है, अरे क्या बोझ है ये। तो प्रभुपाद जी ने चेतावनी दी कि भक्त को चाहिए कि उसका श्रवण कीर्तन बड़ा ठीक तंदुरुस्त रहे, ताकि वो व्यक्ति अपनी उत्साहपूर्वक भक्ति कर सके, नहीं तो भावना बिगड़ जाएगी। सेवा करते समय सेवा बोझ लगने लगे तो फिर वो ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी अक्सर बताया करते थे कि हमारे जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, कृष्ण और भावना, कृष्ण एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस या चेतना तो है हमारे अंदर, परंतु कृष्ण के ऊपर नहीं है, किसी और में, तो फिर क्या लाभ है ऐसी चेतना का। तो हमारी सेवा में भी हमारी ये भावना ऐसी रहनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि ब्रह्मचारियों के बीच में आश्रम में रहते हुए ये सौहार्द की भावना होना बहुत आवश्यक है। कभी भी द्वेष, ईर्ष्या, घृणा ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। हर एक ब्रह्मचारी को अन्य ब्रह्मचारियों के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये मेरे भाई हैं और हम लोग मिलजुल कर अपृथक धर्माः, हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, तो एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। हर एक ब्रह्मचारी को हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जब हमारे कोई भाई कठिनाई में हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो। हो सकता है किसी को स्वास्थ्य की कठिनाई हो सकता है किसी को कोई मानसिक समस्या हो सकता है किसी को कोई और समस्या हो, जैसे श्रद्धा की समस्या हो जाए या साधना में डावाडोल होने लगे, कुछ भी क्यों ना हो, तो हमें एकजुट होके रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ये भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। इसको कहते हैं सौहार्द, एक दूसरे के सुहृद बनने का प्रयास करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। यदि ऐसी भावना हम बनाए रखेंगे तो फिर निश्चित ही आजीवन हम उत्साहपूर्वक इसी आश्रम में, अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम में रह के अपना जीवन बिता सकेंगे, जीवन के अंत तक बड़े प्रसन्नता से, उत्साह से हम जिएंगे, भगवान की सेवा करके अंत में शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में लौट के जाएंगे। तो आपस में ऐसे सौहार्द की भावना जागृत करना और उसको बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। केवल कोई व्यक्ति कह रहा मैं 64 माला जप करता हूँ, 32 माला जप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सेवा करता हूँ, इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, परंतु अन्य ब्रह्मचारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना लेता, भला बुराई करता है, अरे ये ऐसा है, वो ब्रह्मचारी ऐसा है, हम निंदा करते हैं अन्य ब्रह्मचारियों की, और हम प्रसन्न होते हैं जब उनके जीवन में कोई कठिनाई आती है, हमें लगता है चलो अभी एक स्पर्धा हो रही है तो वो नीचे आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तुम्हारी प्रतियोगिता में मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ, तो ऐसी भावनाएं यदि आने लगेंगी हमारे हृदय में, तो हमें पहचान लेना चाहिए कि ये भौतिकतावाद है, मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी। तो ऐसी भावनाओं से हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई भक्त ब्रह्मचारी हो, बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा हो, तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि कितनी अच्छी तरह से ये प्रभु कर रहे हैं प्रगति। और किसी ब्रह्मचारी के जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमें थोड़ा दुख होना चाहिए और देखना चाहिए कैसे हम इस ब्रह्मचारी हमारे भाई की मदद कर सकते हैं। और यदि कोई ब्रह्मचारी आके हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे जिससे जो हमारे लिए अप्रिय लगे, फिर भी उस ब्रह्मचारी के प्रति मन में बुरी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। अरे, इसने ऐसे मेरे साथ बात किया। कभी कभी जब हमारे साथ कोई ऐसे भला बुरा कह देता है ना, सालों तक हम भूलते नहीं हैं। ऐसे होता है कि नहीं? होता है ना ऐसे? मैंने तो ऐसा अनुभव किया है, कई भक्त आके कहते हैं पुरानी बातें, 10-20 साल पहले वाली बातें भूलते नहीं है। इस भक्त ने ऐसे मेरे साथ किया था इतने साल पहले। अब ये सारी चीजें हैं, हमको बांध के रखेंगी भौतिक जगत में। हमें इतनी बड़ी यात्रा में जाना है गोलोक वृंदावन की ओर, और साथ में अनेक लोगों को लेकर जाना है। हम ऐसे छोटी छोटी चीजों में अटक के रह गए, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे कहा, तो बस हम किए कहने करने पर ही अटक जाएंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए आश्रम में वातावरण ऐसे होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भावुक बनना चाहिए। हमारे जो संबंध आश्रम में होंगे वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तो ऐसी भावना यदि हमारे बीच में हम बना के रखेंगे तो फिर भगवान कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे, और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हुए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। और क्या चाहिए? चाहे दुनिया हमारे ऊपर अप्रसन्न रहे, परंतु भगवान और गुरु वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो बस हमारा जीवन सफल। तो ये दो कारण हैं जिनसे भगवान इतने प्रसन्न हुए। और आके वो क्या कहते हैं, वरम वृणीध्वम, आशीर्वाद। कोई वर या आशीर्वाद मांगो। कौन? नृप नंदनाह। नृप अर्थात राजा, नंदन अर्थात जो प्रसन्न करते हैं, जो पुत्र को नंदन कहते हैं या पुत्री को नंदिनी कहते हैं। वृषभानु नंदिनी, देवकी नंदन। नंदनाह अर्थात बहुवचन। तो हे नृप नंदनाह, हे राजकुमारों, आपका कल्याण हो, भद्रम वो। वरम वृणीध्वम, कोई वरदान मुझसे पूछो। क्यों? तुष्टो हम, क्योंकि मैं आप सबके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? सौहार्देन और अपृथक धर्माः, इन दो कारणों से। हरे कृष्णा। ये महत्वपूर्ण संदेश है ना हम सबके लिए। तो आप सब कितने भाग्यशाली हैं, इतने सुंदर वातावरण में आपको रहने का अवसर मिला है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से ऐसे इतने एक एक करके सारे सुंदर प्रकल्प खड़े होते जा रहे हैं, न केवल यहाँ पर, अन्य स्थानों में भी। इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, और महाराज जी की सहायता करने के लिए मैं हमारे मंदिर में रहने वाले और बाहर भी रहने वाले कितने वरिष्ठ भक्त हैं, कितने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे मोहन रूप प्रभु बैठे हैं सामने, ऋषि कुमार प्रभु को देख रहा हूँ, और भी आप में से कितने भक्त होंगे जो इतने सालों से यहाँ कर रहे हैं सेवा। आप सबके नाम मुझे पता नहीं है, ये न तो आपका नाम मैं ले सकता था, परंतु मैं पहचानता नहीं आप सबको। तो पूरा लाभ उठाइए और अपने भक्ति में आप प्रगति करिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, इस भाग्य का लाभ आपको उठाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई मतभेद, कोई विरोध? हाँ, कौन सा मतभेद है बताइए। हाँ, क्या प्रश्न है? यस, कल मिले थे मुझे। हाँ,
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वेरी इंसाइटफुल टॉपिक ऑफ ब्रह्मचारी रिलेशनशिप बिल्डिंग। महाराज, आपने ये बड़ा मुख्य पहलू आपने समझाया, बहुत सरल शब्दों में समझाया, बहुत गहरे तत्व से। परंतु बहुत बार हम प्रयास तो करते हैं, हम भी इसका महत्व जानते हैं कि अगर मुझे आश्रम में खुश रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अन्य भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाऊँ। और बहुत बार हम प्रयास भी करते हैं पर वो प्रयास भी उस तरीके से स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। और बहुत बार फिर हम ऐसे सीनियर से सुनते हैं कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखो और जो नहीं रखना चाहते हैं आप उनके साथ वैसा रखो। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। तो ये बहुत बार एक डिफ़िकल्ट हो जाता है संबंध बनाने के लिए, यदि हम प्रयास भी करना चाहते हैं पर सामने से वो रेसिप्रोकेशन हम फील नहीं कर पाते, या व्यक्ति सोच लेते हैं कि ही इज़ ओवर एंडेवरिंग टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड दे ट्राई टू टेंड टू लाइक मोर इंट्रोवर्ट और दे डोंट कम अप विद दैट फीलिंग्स, सो दैन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ टू बैलेंस दिस?
सबका स्वभाव अलग होता है, परिस्थितियाँ सेवाएँ सबकी अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कि हर एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध इतना घनिष्ठ न भी हो पाए, परंतु कम से कम अपराध नहीं करना चाहिए, वैर नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या आदि नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये नकारात्मक जो गुण हैं वो तो नहीं होने चाहिए। भले प्रत्येक ब्रह्मचारी के साथ इतने घनिष्ठ संबंध न भी हो पाए, परंतु वैर तो कम से कम नहीं करना और गलत भावना बीच में नहीं लाना, ठीक है? हरे कृष्ण। और कोई बात? हरे कृष्ण। माइक यहाँ पे है।
महाराज जी, आपने बताया कि जब हम सेवा, केवल सेवा 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 ही कर रहे हैं, साथ में हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है कि वो फिर एक प्रॉपर मूड भी नहीं मिल पाता और बर्डन जैसा लगता है। तो एक ब्रह्मचारी के लिए स्पेशली जब सेवा में एंगेजमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है या सेवा में व्यस्त हो जाने के कारण, एटलीस्ट कौन सा ऐसा पार्ट करे श्रवण कीर्तन में जो ताकि वो सेफ रहे, बचा रहे डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली?
संतुलन ही सफलता का राज है, रहस्य है। हमारी सेवा में, हमारी साधना में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे संबंधों में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए कि अब कहीं एक जगह असंतुलन हो रहा है, और जैसे ही वो भक्त इस बात को समझ ले उसे कोई कदम उठाना चाहिए उसे ठीक करने के लिए। ऐसा शायद संभव न हो पाए कि ये संतुलन प्रतिदिन परिपूर्ण रूप में स्थापित किया जा सके, परंतु कम से कम हफ्ते में तो, दो चार दिनों में तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि हर एक भक्त को चाहिए कि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े, ठीक है। अभी हो सकता है कि अचानक कोई ऐसी सेवा आ गई, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है और दो चार पाँच दिन से बहुत सब लोग सेवा में पूरी तरह से व्यस्त रहे, सुबह से रात तक, रात को भी सोने के लिए समय नहीं मिला। हो सकता है ऐसे कभी कभी अवसर आते हैं, तो उस समय हम जब सेवा की आवश्यकता होती है उस समय हम नहीं बोलना चाहिए आज मेरी पढ़ाई हुई नहीं तो मैं सेवा नहीं करूँगा। यदि सेवा उस समय आवश्यक है तो करना है हमें, परंतु बाद में फिर हमें उसे ठीक कर लेना चाहिए। और ऐसी जो दिनचर्या है ये लंबे समय तक चलने लगी तो फिर हमारे अथॉरिटी के पास हमें जाके चर्चा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अब रात भर सोए नहीं और फिर सेवा 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 करते रहे, थोड़े समय के लिए जब कोई विशेष कोई कार्य हो तो वो हो सकता है, परंतु ये लंबे समय तक चले तो फिर हमें सावधान रहना चाहिए। तब हमें उसे रोक के जब सेवा समाप्त हो जाए, समय जन्माष्टमी हो गई, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन हो गया, तो दो चार दिन कुछ आराम मिल लें, कर लें, उस समय जो भी हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे अभी दो तीन दिनों में हम थोड़ा बहुत कर लें। इस तरह से व्यक्ति को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो बुद्धिमान रहे कि कैसे इस संतुलन को बनाए रखे। और ऐसा भी ना हो कि हम केवल दिन भर पढ़ाई करते रहें कोई सेवा ही नहीं करें, तो सेवा भी होनी चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए, पढ़ाई साधना विश्राम सब कुछ सही अपनी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है।
हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने बहुत अच्छे से। धन्यवाद महाराज, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत जानने
पास में रखो माइक,
बहुत समझने को मिला। मैं एक्चुअली ये एक पॉइंट्स के ऊपर पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि अपृथक धर्म, इसके ऊपर आपने विश्लेषण देते हुए बताया कि सभी ब्रह्मचारी जो हैं किसी और को वर्शिप न करते हुए, मतलब सभी के वर्शिप पॉइंट कृष्ण हैं वही वर्शिप कर रहे, ये अपृथक धर्म आपने, तो क्या जो अपृथक शब्द है यहाँ पे तो इसका यही अर्थ है कि सिर्फ हम कृष्ण को वर्शिप कर रहे हैं तो यही एक तरह से सेम पॉइंट हो गया?
बिल्कुल, ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न हम मार्गों को हमने स्वीकार कर लिया, हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई ज्ञान योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है ना, ऐसा तो नहीं है, है ना, सब भक्ति योगी है, एक रास्ता चुना है सबने, भगवान की सेवा जो सर्वोच्च धर्म है उसी को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है।
तो अपृथक धर्म मतलब से यही हुआ जैसे सब लोग वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप पॉइंट जो है कृष्ण।
बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर एटेंडिंग लेक्चर। एक्चुअली एक प्रश्न है जिसे आपने डिस्कस किया, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है सेवा के रिगार्डिंग, जो आपने कहा कि सारे सेवाओं में हमें सेम कृपा मिलती है, हम लेक्चर्स में बताते भी हैं भक्तों को कि या इदम परमम गुह्यम वो वर्ष 1868 के सारी सेवा से समान कृपा मिलती है, बट फिर कभी कभी देखा जाता है कि हम ये फोर्स करते हैं कि नहीं आप इस सेवा में जाओ इससे अधिक कृपा मिलेगी, तो भक्त जब एक सेवा से थोड़े बोर हो जाते हैं तो ये श्लोक को लेकर के बोलते हैं पूजी मैं उस सेवा में स्किप करना चाहता हूँ, तो इसको कैसे समझा जाए कि उस सेवा से पर्टिकुलर स्पेशली जो प्रीचिंग सेवा है जितने बुक डिस्ट्रीब्यूट है उसमें अधिक कृपा मिलती है ऐसा बोलते हैं हम लोग ही, तो सेवा से जब सेवाओं से भक्त बोल तो इसको कैसे समझें?
तो प्रश्न क्या ये है कि कि थोड़ी सेवाएं ऐसी हैं जिनको करके हम थोड़े थक जाते हैं या हम कुछ दूसरी सेवा में कभी जाना चाहते हैं, तो क्या ये ठीक है या नहीं? और दूसरी बात कि ऐसी थोड़ी सेवाएं हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो करोगे तो अधिक कृपा मिलेगी, क्या ऐसा है? यही प्रश्न
yes,
है
yes,
तो ठीक है, यदि ऐसा हमें लग रहा है कि किस सेवा से हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आप अपनी अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, बताओ, और यदि संभव हो तो वो सेवा बदल देंगे। परंतु यदि परिस्थिति ऐसी है, सेवा बदलना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, फिर भी संतुष्ट रहना चाहिए, फिर विद्रोह नहीं करना चाहिए, है ना? जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए, फिर भी सेवा आराम से करना चाहिए, ठीक है।
एक और प्रश्न महाराज, आपने एक वर्ड बताया विग्रह और गलग्रह। यस, फर्स्ट टाइम। तो ऐसा देखा जाता है आश्रम भक्त जो है विग्रह बनना चाहते हैं, और उसका रीजन ये रहता है कि बहुत
वो आवाज टूट रही बीच में, बिना माइक के जरा जोर से बोलो।
क्योंकि बहुत ही ऑस्टियर है, तपस्या वाला सेवा है। तो प्रश्न ये है कि अभी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि एक भक्त के लिए, कि इतनी देर विग्रह सेवा करें और ताकि बाकी जो मैनेज हो। और देखा, प्रैक्टिकली मैंने देखा भी, क्योंकि मैं इंगेज हूँ विग्रह सेवा में, तो देख पाता हूँ कि विग्रह सेवा के साथ प्रॉपर संकीर्तन करना या फिर प्रीचिंग करना या फिर अपना रीडिंग हेयरिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी जो विग्रह सेवा में है भक्त, उनके ब्रह्मचारी क्लास करना, बाकी नॉर्मल क्लास करना बहुत ही टफ हो जाता है, और बाद में बूढ़े हो जाते हैं, फिर भक्त बोलते हैं नहीं पूजी, मैं विग्रह सेवा नहीं करना चाहता। तो इस तरह से इसको मतलब क्या स्टैंडर्ड क्या है विग्रह सेवा का, वो मैं जानना चाह रहा था।
जैसे मैंने पहले कहा, सबका स्वभाव, सबकी रुचि अलग होती है। ऐसे कई भक्त हो सकते हैं जिनको विग्रह सेवा इतनी अच्छी लगती है कि वो आजीवन करना चाहते हैं, उसे हटना ही नहीं चाहते, उनकी रुचि उसमें है, उनको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है उसमें। कोई भक्त ऐसे हो सकते हैं जिनको वो सेवा ठीक है, वो मानते हैं कि भगवान की सेवा है, परंतु उनकी प्रवृत्ति उस तरह से नहीं होती है। उनको यदि कहा जाए कि सेवा कर लो तो उन्हें करनी चाहिए वो सेवा, परंतु यदि थोड़े समय के बाद उन्हें लगे कि नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा है। और अंततः ऐसा लगे तो फिर अथॉरिटी से चर्चा कर लो कि देखो कौन सी सेवा है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सेवा है हमारी, हृदय से हमें करना चाहिए। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़े सौभाग्यशाली हम हैं। तो ऐसे समझ कर हमें करना चाहिए। तो हाँ, थोड़ी बहुत तपस्या तो होती है पुजारी भक्तों के लिए, बिल्कुल सही समय पे आना होता है, स्नान करके, कपड़े स्वच्छ रख के, कई नियमों का पालन करना होता है, परंतु यदि कोई ऐसा कर ले तो बस। फिर उसके बाद यदि वो जब समय मिले थोड़ा प्रचार करना चाहे, थोड़ा और अन्य सेवाएं करना चाहे, तो ठीक है। परंतु चाहे कोई पुजारी हो, कोई रसोई घर में हो, कोई व्यवस्थापन या मैनेजमेंट में हो, सबको श्रवण कीर्तन मजबूत बनाना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्ट्रांग सबका होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेवा में क्यों ना हो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छी तरह से आप बनते जाइए, प्रचेताओं की तरह आप बन जाइए। हाँ, पानी में मत जाइए, तो यहाँ मंदिर में रह के आप कर लीजिए, और राधा पार्थ सारथी की कृपा प्राप्त कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
भक्ति रसामृत।